कुछ देर शान ऑफिस में ही रुका, फिर घर के लिए निकल गया। मल्होत्रा हाउस पहुंचकर उसने कार की चाबी ड्राइवर को दी, फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रात को आरवी से कोई बात नहीं हुई थी और सुबह वो उसके जागने से पहले ही घर से निकल गया था, तो आरवी से बात नहीं हो सकी थी। आज संडे था तो वो आज के दिन को आरवी के साथ बिताना चाहता था। प्यार का एहसास हो चुका था और अब वो आरवी के साथ वक्त बिताना चाहता था। इजहार से पहले उसके दिल में क्या है ये जानना चाहता था। हॉल में कदम रखते ही उसकी निगाहें सामने बैठे सुयश जी और सुभाष जी पर पड़ीं। उसने निगाहें घुमाई पर ना तो उसको आरवी कहीं नजर आई और ना ही अंशु। नज़र तो अर्पिता जी भी नहीं आ रही थी। आरवी के बारे में सीधे से पूछ नहीं सकता था, जबकि उसकी बेचैन निगाहों को तलाश तो उसी की थी। वो आगे बढ़ गया और सुभाष जी के पास बैठते हुए निगाहें घुमाते हुए बोला, डैड बाकी सब कहीं नज़र नहीं आ रहे। शांतनु के इतना कहने की देर थी कि सुभाष जी के साथ साथ सुयश जी की निगाहें भी उसके तरफ घूम गईं। शान को बीते कल का वाक्या याद आ गया और उनकी खुद पर टिकी निगाहें देखकर उसने सकपकाते हुए कहा, वो मेरा मतलब था कि आज तो संडे है तो अंशु घर पर ही होगी, पर नज़र नहीं आ रही और ना ही बड़ी माँ कहीं दिख रही हैं। कहीं गए हैं क्या बाकी सब? उसने आरवी का जिक्र तक नहीं किया, बस एक संभावना सामने रखते हुए उनसे सवाल कर लिया। फिर भी दोनों उसके सवाल को सुनकर मुस्कुरा दिए। शान को वहां रुकना अब अजीब लग रहा था। खुद को कोस रहा था कि क्यों ही उसने उनसे सवाल कर लिया, इससे अच्छा खुद ढूंढ लिया होता। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, इतना कहकर वो तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से अर्पिता जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, शान सुबह सुबह आप कहाँ चले गए थे? जाने से पहले आपने हम में से किसी को कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आज तो रविवार है, फिर भी आप घर पर नहीं रुक सकते थे। उनकी आवाज़ में नाराज़गी साफ छलक रही थी। शान को लगा कि अर्पिता जी हैं तो आरवी भी उनके साथ ही होगी। वो तुरंत ही पीछे पलट गया, पर अकेली अर्पिता जी ही किचन से बाहर आ रही थी। शान की निगाहें अब किचन के एंट्रेंस पर टिक गईं कि शायद आरवी भी उसको नज़र आ जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अर्पिता जी ने एक बार फिर हल्के गुस्से से कहा, शान हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ गए थे आप सुबह सुबह? आपने कहीं जाने से पहले हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। एक दिन भी आप घर पर अपने परिवार के साथ नहीं रुक सकते। शान को आरवी तो नहीं दिखी, पर अर्पिता जी की नाराज़गी देखते हुए उसने उनके सवालों का जवाब शांत लहजे में दिया, बड़ी माँ कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए जल्दी में जाना पड़ा, किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, पर अब बाकी का दिन मैं आप सबके साथ ही बिताऊंगा। क्या फ़ायदा अब आपके आने का? अगर आप सुबह घर पर होते तो आरवी को छुट्टी के दिन भी अकेले अपने मायके नहीं जाना पड़ता, उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा। वहीं उनकी बात सुनकर शान के भाव एकदम से बदल गए। उसने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उनसे सवाल किया, बड़ी माँ आपने क्या कहा, कहाँ गई है आरवी? उसकी व्याकुलता देखकर सुभाष जी मन ही मन मुस्कुरा उठे। वो अपने बेटे के बदलते जज्बातों के बारे में बखूबी जानते थे और खुश भी थे। शान बड़ी ही बेसब्री से अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्पिता जी कुछ कहती उससे पहले ही सुभाष जी ने गंभीरता से उसके सवाल का जवाब दिया, आरवी बहू को अपने मायके जाना था, पर आप घर पर थे नहीं और किसी को पता नहीं था कि आप कब तक आएंगी, इसीलिए वो ड्राइवर के साथ अंशु को लेकर चली गई। आज संडे है तो कह गई है कि या तो रात को आएंगी या सीधे कल सुबह ही वापस आएंगी। शान को उनकी बात सुनकर झटका सा लगा और मुंह से एकदम से निकला, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? आप सबने उसे जाने क्यों दिया? मेरे आने का इंतजार करते, और नहीं तो कम से कम मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म ही कर दिया होता, मैं जल्दी आ जाता। उसकी आवाज़ में नाराज़गी के साथ दुख और अफसोस छलक रहा था। तीनों ही उसके इस बदले रूप को देखकर हैरान से कहीं गुना ज़्यादा खुश थे और उसकी बेकरारी और तड़प देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर बाहर से एकदम गंभीर बने हुए थे। शान का सवाल सुनकर अब की बार सुयश जी ने हल्की नाराज़गी से कहा, आपने हमें बताया था कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, जो हम आपको फ़ोन करके कुछ भी बताते। शान का मुंह बंद हो गया, वो बेचारा मायूस सा मुंह लेकर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर बाकी सब मुस्कुरा उठे। पर कुछ कदम आगे जाते ही शान एकदम से रुक गया। इसके साथ ही पीछे बैठे तीनों बड़ों ने गंभीर चेहरा बना लिया। अगले ही पल शान वापस उनके तरफ घूम गया और तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अचानक उसके बदले अंदाज देखकर सभी हैरान हो गए। अर्पिता जी ने उसको जाते देखते हुए पीछे से सवाल किया, अब आप वापस कहाँ जा रहे हैं? शान के आगे बढ़ते कदम एक बार फिर ठिठक गए, पर फिर उसने वापस तेज़ी से कदम आगे बढ़ाते हुए गंभीरता से कहा, अंशु के पास जा रहा हूँ बड़ी माँ, एक संडे ही मिलता है, उसमें भी अपनी बेटी से दूर रहूँ ये मुमकिन नहीं। शान तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। जाते जाते भी उसने आरवी को लेकर कुछ नहीं कहा, पर सब बिना कहे ही समझ गए कि ये बेचैनी अंशु से मिलने की है या आरवी के पास जाने की। उसकी हालत देखकर वो ठहाके लगाकर हंस पड़े। हमेशा पत्थर की तरह सख्त बने रहने वाले शान को आरवी के लिए पिघलते देख उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और उसे सताने में उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें अब शान में पहले वाले शान की झलक नजर आने लगी थी, इसीलिए वो खुश थे। शान वापस अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और तेजी से कार आरवी के घर की तरफ बढ़ा दी। दूसरी तरफ आरवी अपनी माँ मतलब देवकी जी की तस्वीर लेकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ देर बाद अनुपमा जी भी उसके पास आ गईं और कुछ देर दोनों साथ ही रहे। उसके बाद अनुपमा जी किसी काम से वापस नीचे चली गईं तो आरवी देवकी जी की तस्वीर लेकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कल का बारिश का असर अब तक मौसम पर नजर आ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और धूप बिल्कुल ही गायब थी। आरवी बालकनी के सहारे से खड़ी थी और सामने की तरफ करके अपनी हथेली में देवकी जी की तस्वीर को थामे उनके चेहरे को एकटक देख रही थी। अचानक ही तेज हवा का झोंका उसको छूकर गुजरा और उस सर्द एहसास से उसका बदन कांप उठा। हथेली में पकड़ी देवकी जी की तस्वीर उसके हाथों से छूट गई। आरवी की आंखें घबराहट के मारे फैल गईं। उसने उस फोटो को पकड़ना चाहा पर वो तेज आवाज के साथ सीधे नीचे सड़क पर जा गिरी। आरवी तुरंत कमरे के बाहर भाग गई और भागते हुए सड़क पर पहुंची। उसने फोटो उठाकर देखा जो गंदे मिट्टी वाले पानी में गिर गई थी। गिरने की वजह से कांच टूटकर वहां बिखर चुका था। आरवी नंगे पैर भागती हुई वहां आई थी, जिस वजह से उसके पैरों में कांच घुस गया था। पर उसको अभी खुद का होश था ही नहीं, वो तो उस तस्वीर को देख रही थी जो अब गंदी हो चुकी थी। आरवी ने उसे अपने दुपट्टे से साफ किया पर तस्वीर पर मिट्टी के धब्बे बन चुके थे। आज ही उसको अपनी माँ की तस्वीर मिली थी जिसे उसने ठीक से देखा भी नहीं था, और अब उस तस्वीर में उन्हें देखकर उनको पहचानना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। उससे उसकी माँ की तस्वीर देखने का हक भी छिन चुका था। उसकी एक लापरवाही ने उससे उसकी माँ की अकलौती निशानी को भी छीन लिया था। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? लाइक एंड कॉमेंट करके बताइए।